एपिसोड 50।
वादी अल हिजारा में दाखिल हुए अरब और शुमाली अफ्रीका के रेगजारों में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन को एक किता अर्ज जन्नत जैसा हसीन या बड़े ही खूबसूरत ख्वाब जैसा दिल फरेब और रूह परवर लगा। उनके थके हुए जिस्म तरोताजा हो गए, घोड़ों की चाल और रफ्तार में भी शौकी आ गई। आगे गए तो एक नदी आ गई, ये गहरी तो नहीं थी, दरमियान में पानी की गहराई कमर तक थी, जिसमें से मुजाहिदीन के लिए गुजरना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन यह पहाड़ी नदी थी, इसलिए इसका बहाव बहुत तेज था, इतना तेज कि ताकतवर मुजाहिदीन के लिए भी पांव जमाना मुहाल था। इस तेजी और तुंदी के अलावा पानी इतना एक था कि जिस्म अकड़ता महसूस होता था, घोड़े भी ठिठरते और बिदकते थे। सामान कच्चरों पर लदा हुआ था, बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां साथ नहीं ले जाई जा रही थी, क्योंकि तारीख को बताया गया था वादी के अंदर रास्ता इतना तंग और दुश्वार है कि गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी। चार घोड़ सवार आगे और एक दूसरे से इतना फासला रखकर जा रहे थे कि एक दूसरे की पुकार सुन सकते। सबसे आगे वाला सवार कोई दुश्वार या रुकावट देखता तो बुलंद आवाज से पीछे वाले को और पीछे वाला अपने पीछे वाले को खबरदार करता, और इस तरह सबसे आकर वाला सवार लश्कर के हर अव्वल तक इत्तला पहुंचा देता कि आगे क्या है और किस तरफ मुड़ना है। एक नदी में से गुजरे तो बमुश्किल 2 मील चले होंगे कि एक और नदी आ गई। मुजाहिदीन के कपड़े पहली नदी के भीगे हुए थे और अभी पानी टपका रहे थे कि दूसरी नदी आ गई। ये पहली नदी जैसी थी, कमर तक ही गहरी थी, लेकिन बहाव पहली नदी की निस्बत ज्यादा तेज था। ये नदी भी लश्कर ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार की। घुड़सवार तो घोड़ों को नदी में से गुजार कर ले गए, लेकिन कच्चरों को घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर नदी से गुजारा गया। 4-5 कच्चर नदी के दरमियान में जहां पानी का दबाव भी तेज था कदम न जमा सके और गिर पड़े। तेज और तुंद नदी ने उन्हें संभलने और उठने न दिया। किसी सालार ने दूर से कहा कि इन्हें छोड़ दो, इनके पीछे न जाना, खुद भी बह जाओगे। अल हिजारा की वादी के हुस्न ने पहली चार जाने ले ली। तारीख का लश्कर जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था, वादी का हुस्न पुरिसरार और डरावना होता जा रहा था। बाज जगहों पर कारदार दरख्त थे, बाज जगहों पर तो ये इतने गुंजान थे कि इनमें से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। इन दरख्तों ने सूरज की किरणों और तपिश को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। जमीन इतनी गीली थी कि जगह जगह कीचड़ था, जिसमें प्यादों को चलने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। पूरे 2 दिन इस घने जंगल में से गुजरने में गुजर गए। मैदानी इलाकों में लश्कर 2 दिनों में 40 से 50 मील का फासला तय कर जाया करता था, लेकिन इस जंगल में 2 दिनों में पूरे 10 मील भी फासला तय न हुआ। इन 2 दिनों के दरमियान एक रात पड़ाव भी किया गया। यह सिर्फ जंगल ही नहीं था, बल्कि टीले, टेकरियां और चट्टानें भी थी, खड्ड थे और नशेब भी, जिनमें घाटियां उतरती और चढ़ती थी। इन पर फिसलन थी, घोड़े तो पांव जमाकर चले जा रहे थे, मुश्किल प्यादों के लिए थी। वो एक दूसरे को पकड़कर घाटियां उतरते और चढ़ते, गिरते और उठते थे। सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई खतरनाक दुश्वारियों में अपने लश्कर को ही नहीं बल्कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया रास्ता दिखा रहा था। वो अपने लश्कर के साथ खामोशी से नहीं चला जा रहा था, बल्कि वो लश्कर के हर अव्वल तक घोड़ा दौड़ाता जाता और वहां से लश्कर के आखिर तक जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर लश्कर का हौसला बढ़ाता था। तुम्हें ये दरिया और नदियां नहीं रोक सकती, तुम पहाड़ों के जिगर चाक कर सकते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मंजिल करीब है अल्लाह के शेरो, तुम जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो, पूरा अंदलुस तुम्हारा है, अंदलुस के खजाने तुम्हारे हैं, अल्लाह को याद करते हुए चलो। तारिक का अंदाज ऐसा पुरजोश था कि इस दुश्वार और जानलेवा कूच की सोबतों के बावजूद मुजाहिदीन के चेहरों पर रौनक और होठों पर मुस्कुराहट थी। तारिक की हौसला अफजा ललकार के जवाब में लश्कर की बार बार गरज सुनाई देती थी, हम तुम्हारे साथ हैं तारिक, हम तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मसार नहीं होने देंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कूच की तफसीलात जो तारीख दानों ने लिखी है इतनी तवील है कि सिर्फ इस कूच और रास्ते की दुश्वारियों पर ही एक किताब लिखी जा सकती है। ये एक तारीखी कूच था جس میں اگر ساری نہیں تو آدھی فوج کی تباہی کا خطرہ اور امکان موجود تھا۔ یہاں دو تین حادثوں کا بیان کافی ہوگا۔ ایک ایسا علاقہ آ گیا جس کی زمین عجیب و غریب گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی اور درخت نہیں تھے۔ تاریخوں کے مطابق یہ علاقہ کم و بیش ایک میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس ایک میل علاقے میں صرف گھاس تھی جو ایک فٹ سے چار فٹ اونچی تھی۔ وہاں درخت اس علاقے کے ارد گرد تھے اور ارد گرد اونچی ٹیکریاں تھیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی پگڈنڈی یا راستہ تو تھا ہی نہیں۔ ہر اول دستہ سیدھا اس اونچی گھاس میں داخل ہو گیا۔ یہ سب گھڑ سوار تھے، وہ چھ چھ سات سات کی صفوں میں جا رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں سے گھاس میں سے پانی اچھلنے لگا۔ سواروں نے اتنے سے پانی کی پرواہ نہ کی اور بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیادے بھی گھاس میں داخل ہو گئے اور پانی میں چلتے گئے۔ اچانک سب سے آگے جانے والے سواروں کا شور و غل سنائی دینے لگا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ذرا گہرے پانی میں چلے گئے تھے۔ گھوڑے اتنی زور سے ہنہنا کر بے لگام ہوئے جا رہے تھے جیسے ان کے سامنے بہت بڑا خطرہ آ گیا ہو۔ وہ پیادے جو گھاس میں کچھ دور تک پیچھے کو بھاگے، ان میں سے کئی ایک گر پڑے۔ چند ایک کی چیخیں سنائی دی اور ان کا بڑا بلند واویلا سنائی دیا، بچاؤ بچاؤ، ان بلاؤں سے بچاؤ۔ ان کے ساتھ تین چار گھوڑے تو ایسی بری طرح ہنہنائے جیسے ان پر درندوں نے حملہ کر دیا ہو۔ مگرمچھ ہیں، کوئی چلا، بے شمار مگرمچھ ہیں۔ یہ اونچی گھاس دراصل پانی میں اگی ہوئی تھی اور یہ گھاس نہیں تھی بلکہ پانی میں اگنے والی گھاس نما پودے تھے۔ یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے نیچے پانی نظر نہیں آتا تھا، آگے پانی گہرا تھا۔ جب سوار اور پیادے آگے گئے تو مگرمچھوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ مگرمچھ ایسے ہی دلدلی اور جنگلاتی پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 150-200 تھی۔ انہوں نے چند ایک گھوڑوں کو اور چند ایک پیادوں کو پکڑ لیا اور گہرے پانی میں گھسیٹ کر لے گئے۔ باقی سب وہاں سے بھاگ آئے۔ راستہ بدل دیا گیا، لشکر پہاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ اس وقت تک کئی پڑاؤ ہو چکے تھے۔ مجاہدین کے لشکر کی جذباتی حالت تو ٹھیک تھی لیکن جسمانی طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ یہ طارق بن زیاد کی حوصلہ افزائی کے اثرات تھے کہ لشکر چلا جا رہا تھا اور اس علاقے کی دشواریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز لشکر چلا جا رہا تھا کہ آگے سے چار گھوڑے آئے۔ دو پر تو اپنے ہی سوار تھے، تیسرے گھوڑے پر ایک مجاہد کو اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کا سر ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھی اور اس کے کپڑے خون سے لال تھے۔ چوتھے گھوڑے پر ایک شیر ڈالا ہوا تھا جس کے جسم میں تین تیر لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین حرب ولدستے سے بہت آگے جا رہے تھے کہ اچانک سب سے پیچھے مجاہد پر اس شیر نے حملہ کر دیا۔ اس کا گھوڑا بھاگ اٹھا لیکن شیر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گھوڑا اس قدر ڈرا ہوا بھاگ رہا تھا کہ یہ سوار گر پڑا۔ دوسرے مجاہدین نے شیر پر تیر چلائے لیکن شیر نے مرتے مرتے اس مجاہد کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس جنگل میں جس میں معلوم ہوا تھا کہ یہ پہلے انسان تھے جو گزر رہے تھے، درندے بے دھڑک گھومتے پھرتے تھے لیکن یہ بہت بڑا لشکر تھا اس لیے درندے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود چند ایک خچریں اور گھوڑے درندوں کا شکار ہو گئے۔ مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ اکیلے دکیلے ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس کوچ میں کم و بیش 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یہ خوفناک اور خوبصورت علاقہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ میں نمایاں ذکر ایک تنگ اور انتہائی بلند راستے کا ہے جو اب شروع ہو رہا تھا۔ یہاں تک مجاہدین بالکل ہشل ہو چکے تھے۔ یہ راستہ ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا اور اتنا تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا گزر سکتا تھا۔ لشکر اس راستے پر چلتا گیا۔ دو تین خچریں پھسل کر لڑکتی ہوئی بہت دور نیچے جا پڑی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں، انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کچھ اس طرح ہوا کہ پہاڑ ایک طرف ہٹ گیا اور دیوار کی طرح ایک اور پہاڑ شروع ہو گیا جو بہت ہی بلند تھا۔ لشکر اس کی چوٹی پر چلا جا رہا تھا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ اس راستے پر آنے سے پہلے پورا ایک دن سارے علاقے میں آدمی بھیج کر کسی اور راستے کی تلاش میں بھیجا گیا تھا، لیکن ہر طرف پہاڑ، چٹانیں اور ندیاں تھیں۔ مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھیں۔ راستہ تنگ تھا اور بلندی اتنی کہ نیچے دیکھنے سے خوف طاری ہوتا تھا۔ देखते ही देखते दो घोड़ों के पांव पत्थरों पर आने की वजह से फिसल गए और घोड़े बिरक कर जरा इधर उधर हुए तो लड़कते कलाबाजियां खाते सवारों समेत नजरों से ओझल हो गए। फिर दो तीन मुजाहिद लड़क गए। इनकी चीखें और बावेला सुनाई देता रहा जो दूर ही दूर हटता गया। फिर इस खौफनाक वादी में खामोशी छा गई। तकरीबन हर मौर्रिख ने इस रास्ते का जिक्र खास तौर पर किया है और लिखा है कि यह तारिक बिन ज़ियाद ही था जिसने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर लश्कर को इस रास्ते पर डाल दिया था। अगर वह लश्कर को इस रास्ते से गुजरने के तरीके और एहतियाती तदाबीर साथ साथ न बताता रहता तो लश्कर के कई घोड़े और आदमी जाये हो जाते। यह तंग और बहुत ही बुलंद रास्ता दो दिनों में तय हुआ। रात के वक्त भी लश्कर को चलता रखा गया। वहाँ रुकना खुदकशी के बराबर था। अगर रुक जाते तो थकन से गुनूद की तारी हो जाती और ये गुनूद की मुजाहिदीन को ऊपर से नीचे लड़खा देती और वो सीधे मौत के मुंह में जाते। रात को मशालें जलाई गई थी और चलने की रफ्तार बहुत ही सुस्त हो गई थी। अगला दिन भी चलते हुए गुजरा। रास्ता और ज्यादा तंग और बुलंद होता जा रहा था। लश्कर की अब यह कैफियत जैसे मुजाहिदीन ख्वाब में चल रहे हों। एक तो नींद का गलबा था, दूसरे सफर की थकन थी और आसाब पर खौफ का असर भी था। सबसे बड़ी बात यह कि लश्कर को दो दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था और घोड़े भी भूखे और कच्चरें भी भूखी थी। इससे खतरा पैदा हो गया था कि जानवर बेकाबू हो जाएंगे। यह सवारों का कमाल था कि उन्होंने जानवरों को काबू में रखा। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले रास्ता खुला होने और नीचे को जाने लगा और फिर ये एक पहाड़ के साथ हो गया। फिर थोड़ा ही फासला आगे ये रास्ता बल खाता हुआ एक वादी में उतर गया जो इतनी कुशादा थी कि यह पूरा लश्कर इसमें समा सकता था। तारिक बिन ज़ियाद ने लश्कर को वहीं रोक लिया। वादी सरसब्ज और शादाब थी। घोड़ों और कच्चरों को चरने चुगने के लिए खुला छोड़ दिया गया। प्यादों का यह आलम था कि वो गिर पड़े और जो जहां गिरा वहीं सो गया। तारिक बिन ज़ियाद के हुक्म से इस वादी में दो दिन पड़ाव किया गया। फिर आगे कूच शुरू हुआ। अब जो इलाका आया वो हमवार नहीं था लेकिन इसमें वो दुश्वारियां और रुकावटें नहीं थी जिनमें से लश्कर गुजर कर आया था। एक पड़ाव और किया गया। जो मुजाहिदीन आगे गए हुए थे उन्होंने आकर इत्तला दी कि एक बड़ा शहर जिसका नाम मायदा है एक दिन की मसाफत पर है। जिस रास्ते से तारिक बिन ज़ियाद गुजर कर आगे निकला इस रास्ते ने इतनी ज्यादा अहमियत हासिल की कि इसका नाम फिज्जे तारिक रखा गया और आज तक ये रास्ता इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। फिर वो वक्त आया कि तारिक के लश्कर ने मायदा को मुहासरे में ले रखा था। मायदा का शुमार भी उन्दलुस के बड़े शहरों में होता था। शिमाली उन्दलुस में इस शहर को एक खास मुकाम हासिल था। शहर पना पर तीरंदाज और बर्छीबाज खड़े थे और वह मुसलमानों को ललकार रहे थे। यूं मालूम होता था जैसे वो इस शहर पर जाने कुर्बान कर देंगे। तारिक बिन ज़ियाद शहर के चारों तरफ घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। दीवार हर तरफ से मजबूत लगती थी और साफ पता चलता था कि यहाँ के लोगों के दिल भी इस दीवार के पत्थरों की तरह मजबूत हैं। तारिक ने वहां की जबान में ऐलान कराया कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि शहर के दरवाजे खोल दो। अगर दरवाजे तुमने खोल दिए तो हम तुम्हें दोस्त समझेंगे और तुमसे कोई तावान और जजिया वसूल नहीं किया जाएगा। अगर दरवाजे हमने अपनी हिम्मत से खोले तो फिर तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो दुश्मन दुश्मन के साथ किया करता है। इस ऐलान के जवाब में दीवार के ऊपर से तीर बरसने लगे और इसके साथ ये ललकार के दरवाजे अपनी हिम्मत से तोड़ लो। तारिक ने दरवाजों पर हमले का हुक्म दे दिया। दिन भर हमले होते रहे लेकिन कुछ नतीजा बरामद न हुआ। अगली सुबह फिर वही कुछ तो खून होना था लेकिन शहर का सदर दरवाजा खुला और चार घुड़सवार बाहर निकले। एक घुड़सवार के हाथ में सफेद झंडा था। उन्होंने करीब आकर पूछा कि तुम्हारा सिपह सालार कहाँ है? हम सुलह की बात करने आए हैं। इन्हें तारिक बिन ज़ियाद तक पहुंचा दिया गया। सुलह के लिए आने वाला किलेदार खुद था। ऐ सिपह सालार, किलेदार ने पूछा, क्या ये सही है कि तू वादी अल हिजारा से अपने लश्कर को गुजार कर लाया है? क्यों? तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तू हैरान हो रहा है कि मैं इस वादी में से गुजर कर आया हूँ? हाँ, قلعیدار نے کہا، میں ہی نہیں، جو سنے گا وہ حیران ہوگا، اس وادی میں سے وہی گزر سکتا ہے جو جنات میں سے ہو یا کسی کی بدرو ہو، کوئی انسان زندہ و سلامت اس میں سے نہیں گزر سکتا، ہم لوگ کئی مہینوں کی مسافت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وادی میں سے نہیں گزرتے۔ دیکھ لے میرے دوست، طارق بن زیاد نے کہا، میں اپنے لشکر کے ساتھ تیرے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں، اب یہ سوچ لے کہ جو شخص اپنے لشکر کو جنات اور بدروحوں کی وادی میں سے زندہ نکال لایا ہے اس کے لیے شہر کے دروازے کھلوانا کوئی مشکل نہیں، ہاں اگر تو انسانوں کی خونریزی میں خوش ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ پھر تو زندہ نہیں رہے گا اور اس شہر کی فوج اور شہریوں کو بہت زیادہ تاوان اور جزیہ دینا پڑے گا۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔